ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सायने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यम् औज्यम् स्वराज्यम् वैराज्यम् पार्वेष्ट्यम् राज्यम् महाराज्यमाधिपतयम् समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषः पराधाद पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदपेश श्लोको दिगितो मरुतः परिष्कारो मरुतस्यावसन्नग्रहे आविक्तस्य कामप्रे विश्वे देवः सभासद इति ॐ विश्वतस्य चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतपात् सम्बाहुभ्याम् दमति सम्पत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्नदेवैकः देवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभि सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीकृष्णाय नमः यथा लब्धोपचारमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि पूज्यावर रामचन्द्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय
श्री कृष्ण गो परीक्षित महाराज की
जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण
की जय।
बाल कृष्ण भगवान की
जय।
गोपाल कृष्ण भगवान की
जय।
रास रासेश्वर भगवान की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।
धेयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दौ त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठरार्यवत्सायदगादरण्यौ मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दौ कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः योऽस्योत्प्रेक शकवादि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिता यं संपद्य जहत् त्यजामनुषै सुप्तः कुलायं यथां तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्मम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् करसे द्वितीये तस्मिन् पदेस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषां सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तम् सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम् तावद्बलात् स्फुरति हन्तरिदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जू
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार सर्वाकार सर्वाधार निर्विकार अनाथनाथ दीनानाथ जगन्नाथ यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम कर विभिन्न स्वरूपों में विराजमान भगवत स्वरूप सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं बहनों को श्रीमद् भागवत महापुराण को संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर कंस वध के पश्चात की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कृष्ण लीलाएं बड़ी रहस्यमय हैं। गोवर्धन पर्वत का भगवान ने जब समस्त ब्रजवासियों के रक्षार्थ अपने हाथ पर स्थापन किया उसके बाद एक भी दैत्य को मारने की लीला नहीं आई। सुखदेव जी महाराज ने लीला का क्रम ही बदल दिया। उसके बाद तो केवल कंस मारा गया है, जो कि गोकुल में नहीं मारा गया था, मथुरा में मारा गया था। कैसी विचित्र बात है, कैसी विचित्र लीला है। और एक असुर को मारने की लीला तो बोली जाती है, परंतु वो लीला रास पंचाध्याय में पहले ही बता दी। रास पंचाध्याय को तो बहुत ही विशेष भाव में हमारे सुखदेव जी महाराज ने कहा है। दशम स्कंद के आगे पीछे के प्रसंगों को देखते हैं तब ये अपने आप में एक अलौकिक भाषा है, अलौकिक की भाव है, अलौकिक की लीला है। और फिर उसमें भी रास पंचाध्याय की लीला तो और ही अलग है, बड़े विचित्र है। उन शब्दों पर विचार करें तो एक नए ही प्रेम राज्य में प्रवेश होता है। ये भगवान की कृपा है, भागवत की कृपा है। भागवत और भगवान ये कृपा साध्य है। देखो भगवान गोकुल में गए तो प्रेम का साम्राज्य फैल गया। मथुरा में पहले भी जन्म लिया था, मथुरा को छोड़ा और अब गोकुल से वापस मथुरा पधारे हैं। कंस का उद्धार हो गया, उग्रसेन को राजा बना दिया, नंद जी को विदा किया, उज्जैनी जाकर 64 दिनों में 64 कलाएं पढ़कर आ गए। सुखदेव जी महाराज फिर प्रेम लीला में डूब गए। देखो भाई, हमें अच्छी तरह से मन में जची हुई बात है कि अब जो ये बात कही जाएगी इसमें लीला का भाग तो कुछ नहीं है, लेकिन एक विरह लीला में कैसे भक्त का और भगवान का हृदय होता है उसका प्रसंग है। तो उस प्रसंग में देखो आपको आलस्य न आ जाए, थोड़े आप सावधान रहना, क्योंकि इस लीला के सुनने की बड़ी महिमा है। भगवान के विरह प्रेम की लीला, भगवान के प्रेम की लीला ये जैसे दुरू है समझना, ऐसे विरह प्रेम की लीला उससे भी ऊंची होती है। तो देखो इसमें भगवत भाव और भक्त भाव दोनों का खूब अच्छा मिश्रण हो रहा है। इसमें हम लोग हमारे भी भाव यदि अवगाहित कर लें तो हमारे भावों का भी मिश्रण हो जाएगा, हम भी भगवत भाव और भक्त भाव में डूब सकते हैं। भगवान के प्रेम की लीला में कोई क्यों का प्रश्न नहीं होता, ऐसा क्यों हुआ, प्रेम है। प्रेम के लिए कोई क्यों का उत्तर नहीं होता, इसलिए बहुत आप सावधानी से, वैसे भी सुन रहे हैं परंतु और विशेष सावधानी से आप लोग सुनेंगे। भागवत को तो पढ़ते हैं और जब कथा आप लोग सुनते हैं तो शायद ही आपको कोई ऐसा प्रसंग लगा होगा कि जिसमें ये लगता होगा ये प्रसंग क्यों कहा। हमको कभी कभी लीला भाग में या और कहीं थोड़ा थोड़ा लग भी जाए तो भी वो हमारी समझ की कमी है, सुखदेव जी का शब्द व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी ने जिस स्कंद में जो कथा कही है, जो विभाग किया है, वो उस स्कंद के नाम के अनुसार कथा कही है। दशम स्कंद का नाम है निरोध स्कंद, जिसमें हमारी चित्त वृत्तियां क्या, सुनने वाले की क्या, सुनाने वाले की क्या, भगवान से प्रेम रखने वालों की क्या, भगवान से द्वेष रखने वालों की क्या, सबकी चित्त वृत्तियां उनमें डूब जाए। ऐसी ये निरोध की लीलाएं हैं। देखो इसमें एक बात और है कि भक्त है उसकी चित्त वृत्तियों का निरोध भगवान करते हैं, और भगवान अपनी वृत्तियों का निरोध भक्त में करते हैं। भगवान दोनों जगह मुख्यता से काम करते हैं, भक्त की चित्त वृत्तियों को अपने में निरुद्ध करते हैं और स्वयं अपनी चित्त वृत्तियों को भक्तों में निरुद्ध करते हैं। यशोदा जी की गोद में खेलने वाले भगवान यशोदा की चित्त वृत्तियों को अपने में लीन करते हैं, और कभी कभी यशोदा जी अपनी दृष्टि के अनुसार कुछ कृष्ण को समझने का प्रयास करती हैं, तो भगवान वापिस अपने अनुसार उनको अपने में लीन करते हैं। ऐसी लीलाएं। तो आइए आप हम सभी कहां चले, मन से चलते हैं सुखदेव जी के पास, और सुखदेव जी के मन के अनुसार चलते हैं हम लोग मथुरा। सुखदेव जी के मन के अनुसार चलेंगे तो सुखदेव जी हमको न जाने क्या क्या भगवान की झांकियां दिखाएंगे। मथुरा के अंदर भगवान का एक बड़ा सुंदर महल है, उस महल में चलते हैं। उस महल में अभी कोई नहीं है, अकेले हैं भगवान। महल का दरवाजा बंद है, जिस कक्ष में भगवान है उसका दरवाजा बंद है। उद्धव जी भगवान की प्रतीक्षा में थे कि एकांत हो तो मैं कुछ बात करूं। धीरे से उन्होंने उस किवाड़ को खोला, देखा भगवान ही हुए। भगवान एक हाथ से यूं सिराता दिए हुए, सिर को यूं रखे हुए, और अपने दाएं चरण को आधार दे करके और बाएं चरण को यूं रखे हुए भगवान। ये एकांतिक विश्राम की झांकी है। भगवान के नेत्र बंद हैं। उद्धव जी उनके पास दबे पैर जा रहे हैं कि भगवान विश्राम में है या वास्तव में कोई गंभीर चिंतन में है। धीरे धीरे चरण रखते हुए उद्धव जी पास में गए तो देखा कि भगवान को नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं है। नींद तो भाई उनको आए कि जिनको या तो भगवान में प्रेम न हो, और नींद उनको आए जिनके ऊपर या तमोगुण का ज्यादा भार पड़ गया हो। भगवान को तो न जाने कितने कितनों की चिंता सता रही हो, कैसे नींद आएगी। इसलिए भगवान तो सो नहीं रहे बल्कि रो रहे हैं। भगवान से टप टप आंसू पड़ते हैं। उद्धव जी ने देखा कि ये क्या नजारा है, ये क्या माजरा है। भगवान के आंखों में आंसू, और बीच बीच में कभी भगवान सुबकते भी हैं, हमने तो सोचा था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा सत घन चित घन और आनंद घन है। घन का अर्थ क्या है? ठोस, लबालब भरे हुए, आनंद से भरे हुए, और वो भी कभी रोते हैं। हमने सुना था कि भगवान सबको मिले हुए हैं और भगवान से सब मिले हुए हैं, तो कौन सी वस्तु भगवान से दूर है जो भगवान रोते हो? कौन व्यक्ति दूर है, कौन वस्तु दूर है, कौन सा लोक दूर है, कौन सा परलोक दूर है? उद्धव जी कुछ समझ नहीं सके। असल में उद्धव जी तो आज यहां भगवान के पास बैठकर कुछ ज्ञान की चर्चा सुनने आए थे कि आत्मा क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, परमात्मा और ईश्वर ये एक में भी क्या भेद है, कितनी एकता है, ये सब बातें सुनने के लिए आए थे। पर ऐसे समय में भगवान से कैसे बतलाया जाए? भगवान के उस रोने में एक बात थी कि भगवान का मुखमंडल बड़े विलक्षण दीप्ति से प्रकाशित हो रहा था, अलौकिक कांति भगवान के मुख से निकल रही थी। उद्धव जी को भगवान का ये रोना पसंद भी आया और पसंद नहीं भी आया। रोना तो वैसे पसंद होता ही नहीं, परंतु जो मुखमंडल की एक विलक्षण आभा देखी उससे लगा कि ये तो रोना बड़ा विलक्षण है जी इनका, पसंद भी आया। भगवान उद्धव जी को देखकर वहां बैठ गए। भगवान की अश्रुधारा से उद्धव जी से भी रहा नहीं गया, उद्धव जी के भी आंखों में टप टप आंसू गिरे। इतने में ही भगवान ने नेत्र खोल करके देखा और नेत्रों के अंदर रुका हुआ अश्रु प्रवाह बह गया। उसके बाद डबडबाते नेत्रों से देखा, कौन हो? उद्धव? अरे उद्धव, बहुत अच्छा हुआ तुम यहां आए, बहुत ही अच्छा हुआ, मैं तुम्ही को याद कर रहा था। उद्धव ने कहा कि महाराज आपका ये रूप कैसे है? आप तो सारे संसार को आनंद देने वाले हो, आपका नाम आनंदद है, आनंदद, आनंदम ददाति इति आनंदद है, आप तो आनंद को देने वाले हो। आनंद में और रुदन में कोई संबंध नहीं होता, आप तो रो रहे हो, क्या बात है? रोते हुए आदमी को कोई कहे ना कि क्यों रोते हो तो वो और रोता है। भगवान और रोए। भगवान ने कहा, उद्धव सुनो, देखो। उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उद्धव जी को खूब प्रेम से फुसलाते हुए, उनका सम्मान करते हुए हमारे भगवान कहने लगे, उद्धव तुम ब्रज में जाओ ना। ब्रज को छोड़ने के बाद मुझे नंद जी की, यशोदा जी की बहुत याद आती है, और उनसे भी ज्यादा मुझे गोपियों की याद आती है। गोपियां मेरे वियोग के रोग को सह नहीं सकेगी। मैं वहां से बलपूर्वक रवाना तो हो गया, लेकिन गोपियां जब वहां मुझे रवाना होते समय में जिस व्याकुलता से देख रही थी उससे मैं बहुत घबरा गया हूं। तुम जाकर के मेरे संदेशों से गोपियों को सांत्वना देओ। उद्धव, गोपियां मुझमें बहुत प्रेम करती है। प्रेम क्या करती है, आज गोपियों को जाकर कोई बोलेगा तो वो बोल नहीं सकेंगी, सुन नहीं सकेंगी, क्योंकि उन्होंने अपना मन तो मुझे दे दिया और बिना मन के कोई इंद्रियों का व्यापार होता भी नहीं। आपका मन कहीं है तो आप यहां होते हुए भी नहीं हो, ऐसा होता ही है। आदमी सामने खड़ा है और मन कहीं और है तो सामने खड़े हुए को पहचानता नहीं है। तो उन्होंने अपना मन मुझे दे रखा है, उनके प्राण मेरे लिए हैं। गोपियों ने अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दिए थे, उन्होंने लोगों की कोई परवाह नहीं की, पतियों की परवाह नहीं की, पुत्रों की परवाह नहीं की, किसी की भी परवाह नहीं की, लोक मर्यादाएं सब पार कर चुकी थी। उन गोपियों के बिना मैं या मथुरा में चैन से नहीं हूं और गोपियां भी मेरे बिना चैन से नहीं है। गोपियां मेरे विरह में उत्कंठित हो रही है। उद्धव, वे बड़ी मुश्किल से जी रही है। दूसरे शब्दों में कहूं कि वो केवल मेरे लिए जी रही है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तुम जाओ और मेरे संदेशों से गोपियों को सांत्वना दो और उनको कहना कि हम आएंगे, हम जरूर आएंगे। उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा, ठीक है महाराज, अभी मैं रवाना होता हूं। उद्धव जी ने प्रणाम किया और वहां से रवाना हुए। अब देखो, यहां से आप ये विचार कीजिए कि भगवान ने वहां तो एक बात कही थी कल कि मैं आऊंगा, आयास्य इति आऊंगा, तो सुखदेव जी ने बहुत चतुराई से उन शब्दों का प्रयोग किया, आयास्य इति दौत्य कही, अपने दूतों से कहा कि मैं आऊंगा। लेकिन भगवान देखो दोबारा गोकुल में गए नहीं है, तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं? क्या सुखदेव जी महाराज झूठ बोलते हैं? नहीं, भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा इति दौत्यकैहि, दौत्यकैहि का अर्थ है दूत के माध्यम से आऊंगा, दौत्यकैहि आयास्य इति, मैं दूत के माध्यम से आऊंगा, खुद नहीं आऊंगा। भगवान ने भी बचाव कर लिया, सुखदेव जी ने भी बचाव कर लिया, ठीक है वहां तो बचाव कर लिया, परंतु यहां कहते हैं भगवान स्वयं के प्रत्यागमन संदेश ही। देखो यहां पर आगमन शब्द नहीं दिया, प्रत्यागमन किया है, प्रत्यागमन बहुत गहरे शब्द है ये। प्रति भी उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग, आंग उपसर्ग तो लगेगा ही आने अर्थ में, जैसे गमन होता है और आगमन होता है, एक उपसर्ग से पार नहीं पड़ी तो कहा प्रत्यागमन, प्रति पूर्वक आंग पूर्वक गम धातु प्रत्यागमन, प्रत्यागमन का अर्थ होता लौटना, आना अर्थ नहीं है, लौटना है, तो मेरे लौटने का तुम संदेश देना। तो यहां प्रत्यागमन संदेश ही। अब देखो आप इस शब्द को अपने पास सुरक्षित रखना, यदि नींद नहीं आ रही है तब अपने पास इस शब्द को याद रखना, और इसको बाद में काम में लेकर के बताएंगे कहां देखो ये भगवान ने कहां चतुराई से शब्द का प्रयोग कर कहां के लिए किया है। इतना तो आप याद रख लेना। अब हमारे उद्धव जी महाराज नंद जी के गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। मन में विचार आता है कि अरे ये तो आप्त काम है, ये तो पूर्ण काम है, अकाम काम है, निष्काम है और सदघन है, चितघन है, आनंद है, सर्वव्यापक है, सर्वानुस्यूत है और निर्विकार है, सर्वाधार है, पर ये क्या है गोपियों के बिना ये रोना धोना, ये क्या चीज हो रही है। उद्धव जी तो ज्ञानी थे ना, तो देखो ज्ञानियों को ये भक्तों की रोना चिल्लाना मिलना उछलना नाचना कूदना इनको अटपटा लगता है, क्योंकि उनको उस भक्ति का स्वाद मालूम नहीं है। देखो भक्ति वाले को ज्ञान वाले की समाधि अटपटी नहीं लगती है, परंतु भक्त को वैज्ञानिक को भक्त की क्रियाएं समझ में नहीं आती है। क्या है ये, भगवान की क्रिया समझ में नहीं आई हमारे उद्धव जी को। उद्धव जी ने कहा ठीक है, अपने को कह दिया, अपने आदेश का पालन करना है। देखो भाई हम तो ये एक बात कहते हैं कि दशम स्कंद की लीलाओं में यदि तुलना करें कौन लीला कैसी है तो अपराध हो जाएगा, किसी लीला की तुलना नहीं होती है। परंतु ये जो लीला अभी चल रही है बड़ी विचित्र लीला, ये भाव लीला है, भाव लीला। कैसे भगवान के भक्तों का, भक्तों का, ज्ञानियों का भाव कैसे भगवान किस प्रकार सुरक्षित रखे, उनके बदलते रहते हैं। ये अब क्या कहें, ये प्रसंग बहुत ही बढ़िया प्रसंग है, मन ही नहीं करता इस प्रसंग को छोड़कर के आगे चलने का। ऐसा आप चलते सुनते रहिए। रथ पर बैठे बैठे उद्धव जी सोचते क्या है ये, क्या गोपियां मिली तो क्या, नहीं मिली तो क्या, ये रोना धोना कृष्ण में कहां से आ गया। हम तो इनको भगवान समझते थे, भगवान समझते और भगवान ही समझेंगे, परंतु ये बातें ऐसी होती है कि जिससे कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। चलो अपने तो चलते हैं, ऐसे अधेड़ बुन में चलते 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 वे गोकुल में पहुंच गए। सायंकाल का समय हो गया, झुंड की झुंड गायें वो जंगल में चर करके आ रही थी। सारे ब्रज के अंदर गोखुर से मिट्टी जो है वो उड़ी हुई गोकुल को आच्छादित कर रही थी, उससे मिट्टी मिट्टी उड़ रही थी गायों के खुरों से। उद्धव जी महाराज ने देखा कि गायें ऐसी त्वरा से ऐसी जल्दी जल्दी जा रही बछड़ों से मिलने के लिए। ये प्रसंग क्यों आया, अरे गोकुल में गायों का बछड़ों में प्रेम, ये प्रेम का प्रसंग, पशुओं में भी प्रेम। ऐसा बहुत सी गायें ऐसी है कि अभी बछड़ा मिला नहीं, बछड़े के मिलने से पहले ही एक बछड़े से मिलूंगी ऐसे उनके दूध टपकने लग जाता है, पहले से ही दूध टपकता है। और आगे गए तो वहां कई गायों को दूहा जा रहा है, झर घर की आवाज आ रही है। और आगे गए तो गोपियां अपने घरों में सायंकाल के समय में कृष्ण का नाम ले लेकर के कीर्तन करती है। हर घर में हवन हो रहा है, ब्राह्मण लोग मंत्र के द्वारा आहुति देते हैं तो वायुमंडल बड़ा सुगंधमय हो गया है। उद्धव जी महाराज नंद जी के घर पर पहुंचे, जो ही जाकर वो रथ रुका नंद जी ने देखा कि ओ वासुदेव आया होगा। लपकते हुए अपने घर से बाहर आए
तो उद्धव जी उस रथ से उतरते हुए दिखाई दिए। आओ उद्धव, आओ आओ आओ। उद्धव जी को अपने घर पर ले गए। अंदर बहुत प्रेम से उद्धव जी का स्वागत किया और फिर खिलाया पिलाया, सब काम हो गया। अब बैठ करके बातें होने लगी। देखना इनकी बातें कैसी विचित्र है। वो ये लीलाएं ऐसी है, इनको सीधा सीधा पढ़ जाओ, सीधा सीधा कह जाओ तो कई बातें तो छिपी रह जाएंगी। अंत प्रवेश करना चाहिए, इन लीलाओं के अंत प्रवेश में आनंद है। उद्धव जी आए, नंद जी से मिले, कुशल क्षेम हो गए, ये नहीं है। अंत प्रवेश करो, लीला में प्रवेश करो। ये नंद जी से उद्धव जी कहने लगे, आइए आइए आइए। अच्छा ये बताइए वसुदेव जी, अब अपने दोनों पुत्रों को प्राप्त करके खूब प्रसन्न है ना? बड़ा अच्छा हुआ ये पापी कंस मारा गया, पर कृष्ण ने मारा ये नहीं, हाथा स्वेन पाप मना, अपने ही पाप से ये मारा गया। यदुवंशियों के साथ ये द्वेष करता था, ये कम पाप था क्या? खैर चलो अपने वो क्या है। आप तो ये बताओ उद्धव जी कि वो कृष्ण कभी अपने मां को याद करता है, सखाओं को याद करता है, गोपियों को याद करता है, वृंदावन को और गोवर्धन को याद करता है? कभी कृष्ण यहां आएगा, अपने लोगों से बैठ करके वैसी बातचीत करेगा? कब हम उसका सुंदर मुखड़ा देखेंगे? अब देखो बोलते बोलते क्या बोलते हैं, उन्होंने हमारी दावाग्नि से रक्षा की। सबसे पहले अग्नि की रक्षा से बात बोलते हैं, दावाग्नि से रक्षा की उन्होंने, इंद्र के भयंकर वर्षा से रक्षा की उन्होंने, वृषभासुर से रक्षा की और उन्होंने सर्प से रक्षा की। ये ऐसी लीलाएं थी जिनमें सिवाय मृत्यु के अलावा दूसरा कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं था। ये खास मृत्यु की बातें थी। दावाग्नि में सब जल करके भस्म हो जाते और हाथी की सूंड जितनी वर्षा में कोई बचने वाला नहीं था। ये मृत्यु मृत्यु के लेकर के बोले कि ऐसी जगह में हमारी रक्षा की, हम उस कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं? उसका उछलना कूदना, कभी कभी मक्खन के लिए मचलाना, कभी कभी प्रेम भरा हट करना, कभी झूठे रोना, कभी आंखों के ऊपर हाथ रख करके और रोने की क्रिया करके हमारे मन में दया का भाव पैदा करना बहुत अच्छा लगता था। आज ये सारा वृंदावन हमारे लिए कृष्ण के चरणों से विभूषित होने से याद का स्थान बन गया है। गर्गाचार्य जी ने सही कहा था उद्धव कि ये कृष्ण और बलराम कोई विलक्षण देवता है जो यहां आए हैं। अब देखो कृष्ण कथा बोल रहे हैं, नंद जी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें, कोई कब की कोई कब की। ये यहां खास देखने की बात है। देखो उद्धव जी, 10,000 हाथियों का जिसमें बल था, ऐसे कंस को उन्होंने मारा और हाथी को मारा, धनुष को तोड़ा, एक हाथ से उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया, प्रलंबासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा। प्रलंबासुर और धेनुकासुर ये साथ साथ नहीं मरे, बहुत अलग अलग मारे गए। और प्रलंबासुर को बलराम जी ने मारा और धेनुकासुर को भी बलराम जी ने मारा। और अरिष्टासुर और तृणावर्त और बकासुर ये बहुत आगे पीछे मरे हैं, तृणावर्त पहले ही मरा है इनमें। बकासुर बाद में मारा गया है, प्रलंबासुर और बाद में मारा गया है, पर ऐसे वो डूबे हुए हैं भगवान के प्रेम में कि आगे पीछे का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे करके वो भगवान की कथा बोलते बोलते रो पड़े हमारे, कृष्णानुरक्त थी नंद जी महाराज रो पड़े। अच्युत कंठो भवत तुष्टिम प्रेम प्रसर विवल, चुप हो गए, बोला नहीं गया उनसे। बंसरी बजाने वाली बात तो बोलो, माखन चुराते वो बात तो बोलो, गोपियों के दिव्य रास को तो बोलो। कहते वो तो निरतिशय प्रेम की लीला है, अभी तो मारने ही मारने की बात कही है, मारने में तो प्रेम कम होता है। लीला का एकदम स्मरण आया, कैसे मक्खन खाया, वो प्रेम की लीला, उसमें तो उनसे बोला ही नहीं गया। और यशोदा जी पास में बैठी थी, यशोदा जी तो सिवाय आंख से आंसू निकाले पूछे बस, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। इन दोनों का ऐसा कृष्ण में प्रेम देखा, अब उद्धव जी जो पहले और कुछ समझते थे ना, अब कुछ सावधान हुए, वो सावधान हुए। और उद्धव जी महाराज नंद जी को अब कहने लगे कि अरे आप दोनों कितने महान हो, आप संपूर्ण संसार के गुरु भूत भगवान श्री नारायण में ऐसा प्रेम किए हो। देखो ये कृष्ण और बलराम तो ज्ञान के भी शासक हैं, ज्ञान को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं, और मृत्यु के समय में कोई इनका स्मरण कर लेता है तो उसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति इनका स्मरण करता है उसके कर्म राशि समाप्त हो जाती है। ये सारे संसार के महाकारण है, आप में इतना विलक्षण भाव हुआ है, अब आपके लिए संसार में कोई काम बाकी नहीं रहा। किंवा वशिष्ठम युवयो सुकृत्यम, कौन सा ऐसा सत्कर्म बाकी है जो आपके द्वारा नहीं हुआ। एक कृष्ण में प्रीति हो गई, सारा काम हो गया, जरूर आएगा वो अच्युत, तुम्हारे यहां जरूर आएगा। कंस को मारा है, अब वो आएगा। और कृष्ण सत्यम करोति तत्, कृष्ण जो बोलता है उसको सत्य करता है। अब देखो उद्धव जी ने भी यही बात की, आए नहीं भगवान, आएंगे कैसे आएंगे, तो यही तो इस कथा का रहस्य है। आप लोग चिंता मत करो। अब उद्धव जी ज्ञान की बात छेड़ते हैं, देखो आपको हम कृष्ण के बहुत जल्दी दर्शन कराते हैं, बहुत जल्दी द्रक्षत है, आप कृष्ण को अपने अंदर ही देख लोगे। जैसे लकड़ी के अंदर आग है, ऐसे आपके अंदर कृष्ण तो समाया हुआ है। अच्छा बताओ नंद जी, बताओ माता यशोदा जी, आपके अंदर शरीर के अलावा आपको आत्मा की अनुभूति होती है कि नहीं? लकड़ी के अंदर आग है ये बात आंख से कभी नहीं दिखाई दे सकती, लेकिन लकड़ी में से आग प्रकट होती है तो आंख से जरूर दिखाई देती है। ऐसे ही आत्मा का जो आपको अनुभव हो रहा है, ये आत्मानुभव कृष्णानुभव से कम थोड़ा ही है। वो आत्मा और वो कृष्ण का रूप एक है, वो सगुण रूप है, ये निर्गुण रूप है, बात इतनी है। बाकी आत्मा और कृष्ण एक है, न उनके कोई माँ है, न कोई पिता है, न कोई भारिया है, न कोई पुत्र है, न आत्मीय है, न परकीय है, न शरीर है, न जन्म है, न मृत्यु है। वो तो केवल लीला के लिए यहाँ आया है, थोड़ी देर लीला करेगा और चला जाएगा। उसका चला जाना भी बड़ा विचित्र है, न यहाँ रहते हुए चला जाएगा। चित्ते कर्तरी तत्रात्मा करते वाहम धिया स्मृत है। देखो वो कर्ता वर्ता कुछ भी नहीं है, करते धरते सब ये त्रिगुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, परंतु ये करते उसके वश में होकर के काम करते हैं। कोई आदमी यूं चक्कर काटे एक जगह खड़े खड़े, बचपन में यूं खड़े हो जाते और यूं सीटी सी बजाते चक्कर लगाते खड़े खड़े, ये चारों तरफ घूमते तो घूमते 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 फिर एकदम रुकते तो ये जमीन यूं दिखाई देवे, यूं नीचे जाए, इधर देखे तो ऊपर जाए फिर नीचे आए। बचपन में ऐसा होता था तो क्या जमीन ऊंची नीची होती है? जमीन नहीं होती है, वो आंख जब घूमती थी अब वो आंख यूं यूं होती है अंदर, तो जमीन ऊंची नीची दिखती है। एक जमीन ऊंची चली गई, अब ये जमीन नीचे चली गई। ऐसे ही करना धरना सब चित्त में होता है, आत्मा चित्त के साथ संबंध करने से अपने को कर्ता धर्ता मान लेता है। इसलिए वो जो आत्मा है वो कृष्ण ही है नंद जी, और वो जैसे आपका लड़का है वैसे वो सबका ही लड़का है, सर्वेशम आत्मजे है। यदि वो किसी का भी पिता है तो सबका पिता है, किसी का भी पुत्र है तो सबका पुत्र है, उसको तो जैसा मान लो वैसा तैयार है। अयोध्या में एक संत थे, वो कहते थे कि रामलला है ना ये मेरा चेला है, मूर्ति लेके बैठ जाते इधर आओ इधर आओ, आओ आओ हमारे रामलला को आशीर्वाद दो। क्या बोलते हो पंडित जी आप, महात्मा जी आप क्या बोलते हो, हम आशीर्वाद देंगे कि लेंगे? चलो बोगे चलो बोल, तुम काम के नहीं हो, जो आवे इन दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखे हमको तो वही अच्छा लगता, आओ कौन आते है? नहीं आया कोई। ऐसी उनकी भक्ति थी, वो अपना चेला ही मानते थे राम और लक्ष्मण को, ये राम लक्ष्मण मेरे चेला है, रोज बैठ जाते और पढ़ाते पुस्तक, देखो राम लला ये पाठ हो गया, अब ये पाठ कराते हैं, ये पाठ पढ़ाते हैं, छोटे छोटे मूर्तियां दोनों की। एक बार अयोध्या जी में शास्त्रार्थ हुआ, उस शास्त्रार्थ में वो अपने दोनों को लेकर के गए, तो वहां उस शास्त्रार्थ में कोई ऐसी बात पूछी गई तो उन महात्मा जी ने बता दी, तो लोगों ने कहा महात्मा जी आप तो बहुत बात जानते हो, आप तो बड़े विलक्षण हो। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि भाई देखो मैं तो इस रामलला को पढ़ाता हूं, इसको पढ़ाना पड़ता है और पढ़ाता है वो पहले खुद पढ़ता है, इसलिए मेरे को तो ये बात पैदा हो गई। तो वहां बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे संत आए हुए थे, उन संतों ने उन महात्मा जी को माला पहनाने के लिए कहा, आप माला पहन, मैं नहीं पहनूंगा, आप हमारे शिष्य को माला पहनाइए। देखो बेटा इतने लोगों में हमारी इज्जत रखो, ये माला पहना रहे माला स्वीकार कर लो। तो उसी समय वो मूर्ति थी ना पत्थर की मूर्ति, वो यूं नीचे हो गई, माला पहनने के लिए सिर नीचा हो गया और अपने घर पर आ गए। उन महात्मा जी की बड़ी प्रसिद्धि हुई। एक बार खूब से संत थे, वो संत आ गए उन महात्मा जी के आश्रम में, कहने लगे गुरु भाई कि हाँ महाराज आज तो हम कटहल खाएंगे कटहल। अब कटहल मिलता है बहुत मुश्किल से मिलता है कटहल, हम तो कटहल की पंगत लगाएंगे आज। वो बाबा जी बिचारे वो सख पका गए, अब इनको ये कह दूं कि मेरे पास नहीं है कैसे कहूं, और है नहीं तो अपने कमरे में गए और रामलला से कहा बेटा आज तो मेरी इज्जत का सवाल है, इतनी बड़ी भारी पंक्ति आ गई, संतों की पंक्ति लग रही है, अब कटहल कहां से लाऊं, मैं कहां से लाऊं कटहल, मेरे पास तो कटहल है नहीं। कटहल तुम कटहल ले आओ बेटा, कटहल लाओ। गुरुजी ने तो कह दिया और थोड़ी देर देखे तो वहां पर कटहल की बरसात होने लग गई, खूब से कटहल कटहल खूब ढेर लग गया कटहल का, और फिर जो है कटेल की पंगत लोग साहब संतों कटेल खाओ। संतों ने कहा महाराज जी कटेल कहां से आया, घोड़े से संत थे वो। कि भाई मेरे पास तो कटेल था नहीं, मैंने तो मेरे चेले को कहा, चेला ले आया मैं क्या करूं। कि कौन चेला, ये देखो ये रामलला मेरा चेला है। क्या महात्मा जी आप इनको चेला मानते हो, भाई मैं तो चेला मानता हूं। तो कुछ भी मानो, चेला मानो, बेटा मानो, शिष्य मानो, जो हम भगवान को मानते हैं भगवान वैसा का वैसा ही मानने के लिए तैयार है। उद्धव जी कहते हैं सर्वेशम आत्मजो यात्मा पिता माता से ईश्वर है, सब कुछ होते हुए भी उसके ईश्वर पड़े में कोई कमी नहीं है। देखो नंद जी, जो कुछ देखा हुआ है, जो कुछ सुना हुआ है, जो हो रहा है, जो होने वाला है और जो होगा, जो स्थाणु है, जो स्थाष्णु है, स्थाष्णु माने स्थावर है, चरिष्णु माने जंगम है, और अणुर बृहत छोटा है और बड़ा है, और अल्पकंचय और थोड़ा है ज्यादा है, वो सब कुछ एक कृष्ण ही है। सैव सर्वम परमार्थ भूत है, सब वस्तु में वो है, सब वस्तु के अंत में सत्यता के दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से वही बाकी रहता है। देखो इस कपड़े का रूप और रंग बदल जाएगा, पर इसके अंदर भगवान है वो नहीं बदलेंगे। कि इसमें भगवान क्या है जी, इसमें क्या भगवान है, तो धागा है और कुछ नहीं है, धागा है इसमें भगवान कहाँ है। तो इसमें ये क्या है कि धागा है, धागा है ना, इतना तो मानते हो कि हाँ धागा है, अब इसको हम फाड़ देंगे तो आप क्या कहोगे, लीरी है, धागा है, लीरी है, जड़ा दोगे तो क्या कहोगे कि राख है, और उसको राख को भी मिट्टी में मिला दोगे तो कह देंगे मिट्टी है। अब ये बताओ इसके रूप तो सब बदल गए, नाम भी बदल गए, पर है बदला है क्या, है यूं ही बोल रहे हो आप, धागा है, लीरी है, राख है, मिट्टी है। तो देखो एक पक्ष में बदलाव आया, एक पक्ष में है ज्यों का त्यों आ रहा है। ये जो है ज्यों का त्यों है ना, इसमें वो तो है भगवान, और ये बदलता है उसका नाम है संसार। ये सब थोड़े में उद्धव जी ने समझाया। ऐसे बात करते करते उनकी रात बीत गई और ब्राह्म मुहूर्त हुआ, और हमारे आदरणीय गोपियां अपने अपने घरों के अंदर उठ करके और दीपक जगा करके बिलोना करने लगी। तो बिलोना करते करते बड़े प्रेम के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे कीर्तन कर रही है। उद्धव जी महाराज बड़ी मधुर वाणी में और हृदय के भाव से निकलने वाला जो कीर्तन था सुन के मस्त हो गए। असल में कीर्तन से क्या होता है कि दिशाओं का जो अमंगल होता है, दिशाओं में पाप छाए रहते हैं, वो सब नष्ट होता है। एक सखी ने देखा कि अरे नंद जी के घर पर एक रथ आया है। हाँ कौन आया है रथ में, वही रथ तो वही है जो अक्रूर ले गया। देखो अक्रूर का नाम मत ले, आप और कुछ भी कह सकते हो पर अक्रूर का नाम मत ले। अक्रूर का नाम तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं, अक्रूर नहीं आता तो कृष्ण यहां से नहीं जाता। कौन आया है कि ये क्या पता कौन आया है, कृष्ण आए होंगे, नहीं नहीं नहीं, कृष्ण आता तो उसकी हवा ही और होती। कृष्ण यहां हो और हमारे हृदय में जलन हो ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण आया नहीं है तो फिर कौन आया कि चलो चलो कि चलो। अब ये गोपियों का झुंड नंद जी के घर के बाहर बहुत बड़ी खाली जगह वहां वो इकट्ठे हो गई सब गोपियां। नंद जी ने कहा हमको तो आपने रात को खूब ज्ञान दे दिया रात में, सैव सर्वम परमार्थ भूत है, अब ये गोपियां हैं इनसे आप बात करो जाकर के। अच्छा नंद जी ये सब गोपियां हैं? हाँ गोपियां हैं। अच्छा अच्छा अभी बात करते हैं। अब वही पीताम्बर वगैरह पैन पान करके और कृष्ण की तरह से ही सब स्वांग बना करके नंद जी के घर से बाहर आए और देखो खूब झुंड है इनका। तो वे गोपियां भी बहुत विचित्र थी, गोपियां एक सखी से दूसरे टल्ला लगा रही हूं टल्ला लगा, देखा कृष्ण जैसा पीताम्बर पहना है और कृष्ण की चाल चलता है, अरे कृष्ण जैसा बनने में तुमको कई जन्म लग जाएंगे तब भी नहीं बनोगे, ऐसे 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 वो बोलती है और बहुत प्रेम से मुस्कुरा रही है। और वहां एक बहुत विशाल वृक्ष, उस वृक्ष के वहां नीचे सब इकट्ठी हो जाती है और वृक्ष पर एक बैठने की जगह वहां पर उद्धव जी बैठते हैं और चारों तरफ गोपियां उनको घेर लेती है। वहां न नंद जी है न यशोदा जी है, वहां न कोई भगवान के बाल सखाएं कोई और है, केवल मात्र गोपियां हैं। हजारों गोपियों के बीच में बैठे हैं फिर भी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रहस्य अपृच्छन एकांत में उद्धव जी से पूछना चालू किया। एकांत ही हजारों हजारों की संख्या में गोपियां, आप एकांत कैसे बोलते हो? एकांत का अर्थ यह है कि हम सबका एक ही भाव था, जैसे सबके अंदर गोपियों का भगवान में एक जैसा भाव, केवल वो थी और दूसरा कोई नहीं था, यह है एकांत भाव। तो एक आसन पर बैठे हुए हमारे उद्धव जी महाराज और उनसे गोपियां पूछती है कि अच्छा आप क्या मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर आई है? यहां संदेश लेकर आए हैं क्या? हाँ अपने माँ बाप के लिए तो सभी संदेश देते ही हैं, कृष्ण का तो यहां दूसरा कोई प्रेमी है ही नहीं, सिवाय माँ के और पिता के कोई दूसरा प्रेमी थोड़े ही रहता है। अब देखो ये तो आप भी समझ गए होंगे ना किस टोन में बोल रही है वो, ये टोन है एक टोन। अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयम् न चक्ष्मये, सिवाय नंद और यशोदा के कृष्ण का तो यहाँ ब्रज में कोई प्रेमी नहीं है, सब कृष्ण से रूठे हुए रहते हैं। और एक बात यह भी है कि संसार में जो प्रेम होता है ये भंवरों के समान स्वार्थियों का प्रेम होता है, भंवरा आता है फूल को चूस करके चला जाता है। ब्राह्मणों के समान ये होते हैं कि ब्राह्मण यजमान के यहां जाते हैं, अपना काम वगैरह करा दिया, ब्राह्मण अपने घर चले गए। तो ये जितनी मित्रताएं यावद अर्थ विडम्बनम, यावत माने जब तक, अर्थ माने स्वार्थ होता है तभी तक ही प्रेम होता है। यजमान के काम बन गया अब ब्राह्मण का कुछ भी हो, ब्राह्मण को दक्षिणा मिल गई यजमान का कुछ भी हो, ऐसे संसार में जितने संबंध है ना ये सब संबंध स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तो कौन स्वार्थी है ये तो देखो उद्धव जी आप ही समझें, हम इतना समझते हैं कि चलो नंद जी और यशोदा जी के लिए भी उसने भेजा तो सही, इतना तो वो स्वार्थी नहीं निकला, कम से कम नंद जी के लिए और यशोदा जी के लिए तो स्वार्थी नहीं निकला, औरों के लिए हो तो वो और की और जाने हैं, पर हमारा कृष्ण नंद और यशोदा के लिए स्वार्थी नहीं निकला। उद्धव जी की बोली बंद हो गई, उद्धव जी बोल नहीं सके, उद्धव जी देखते रहे, यूं देखते रहे तो तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य। अब जो है वो गोपियां भी कृष्ण की पुरानी बातें याद कर कर करके और वो भाव में डूब जाती है। अब उद्धव जी से तो नया परिचय है भाई, उद्धव जी से खुल करके कैसे बात करें नए आदमी से। हमारी माताएं बहने कैसी देखो और जो है उसमें मर्यादा में रहने वाली है, जिसको हम जानते नहीं, जो हमको जानता नहीं उसके सामने ऐसी वैसी बात कैसे करें जो हम कृष्ण के साथ करते थे बोलते थे। अब उनकी याद आई, याद कृष्ण भगवान के, उसी समय में एक भंवरा आ गया। अब उद्धव जी को सुनाना भी है और उद्धव जी से सीधा बात भी करना अच्छा नहीं है, ये मर्यादा है। यदि बहु रानी को कोई चीज घर में चीज की जरूरत होती है तो वो ससुरे से खुद नहीं बोलती है, बहू है ससुरे से कैसे बोले। तो बहू क्या करेगी, बेटे को कहेगी, छोटा सा बेटा जाओ तुम्हारे दादाजी को कहो कि घर में इस चीज की जरूरत है। वो बेटा भी सारा बोल नहीं सकता है, केवल बहू को सुनाना है ससुरे जी को, ससुरे जी ने सुन लिया तो कह अरे पुत्र, अरे भाई बेटा जाकर के तेरी माँ को बोल दे कि वो चीज वहां पड़ी हुई है, अच्छी बात है। न तो ससुर जी सीधे बहू से कुछ बोलते हैं और न बहू ससुर से बोलती है, कितना एक करिया मर्यादा का काम है, घूंघट का घूंघट। घूंघट क्या था, ये लज्जाशील सद्गुणों का प्रतीक होता है, क्योंकि इतने में ही समझ लेना चाहिए कि सीधा बात करना उचित नहीं लगता। अब तो गोपियां भी देखती हैं हम उद्धव को देख देख के कैसे बोले, तो वो बीच में भंवरा आ गया, भंवरा आया तो भंवरे को देखती है वो और भंवरे को सुनाती है और सुनाना है हमारे उद्धव जी को। अब एक एक गोपी ने एक एक बात ऐसी ऐसी विचित्र ढंग से कही है, उद्धव जी तो सुनकर के चुप हो गए, दंग रह गए, आश्चर्य में डूब गए। और कैसे शब्दों में बोलती है, मधुपकित बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित बाला कुंकुमाश्मश्रुभिर्न वह तो मधुपति स्तन माननी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूत स्वमेद्रिक। ए ओ मधुप, मधुप माने भौरा, ए ओ मधुप और मधुप माने उद्धव जी, मधुकुल में पैदा हुए थे ना। देखो मधुप के दो अर्थ है, मधु पिमती थी मधुप है, पा रक्षण भी होता है और पा पाने भी होता है। पा धातु दो अर्थ में आती है, पा रक्षणे और पा पाने, पीने अर्थ में भी पा धातु का प्रयोग, रक्षण अर्थ में भी पा धातु का प्रयोग। तो भौरा है वो मधु को पीता है इसलिए वो मधुप है, और वो मधु मधुम पाती, मधु माने मधु कुलम पाती रक्षति इति मधुप है उद्धव है, और मधु पिवती इति मधुप भ्रमर है, दोनों में लगता है इसलिए मधुप कहा। मधुप कहते हैं उद्धव जी का, ऐसा न समझ ले कि ये तो कोई भौरे की बात कहते हो, मधुप कहते हैं। उद्धव जी भी सावधान हो गए, ए भौरे तो हमारे पास आया है और उस कपटी का मित्र है और हमारे पास आया है तू, और आया नहीं हमारे थोड़े तू पैरों में पड़ करके हमको तू मनाना चाहता है क्या। अरे नहीं नहीं भाई, तेरे को जानते हैं खूब अच्छी तरह से, तेरे मूछों के अंदर जो एक अनुराग है, मथुरा वासियों का अनुराग जो पड़ा हुआ है, उस अनुराग से इस बात की हमें प्रतीति होती है कि तुम उस अनुराग को भी रखना चाहते हो और हमसे भी प्रेम करना चाहते हो। नहीं नहीं भाई, जाओ मथुरा वासियों की स्त्रियों को ही मनाओ, हमारे पास आकर बात करने की जरूरत नहीं है। हम तो कृष्ण की सब चालाकी समझती है। हमारे जीवन में हमको कृष्ण ने दिया भी क्या है, एक बार, केवल एक बार अधरामृत का पान कराया था रासलीला में। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाये त्वाम सुमनस इव सद्य सत्यजे स्मान भवाद्रिक। एक बार उन्होंने हमको ये रासलीला में अधरामृत का पान कराया, बस फिर उसके बाद हमको छोड़ के उड़ गया, जैसे तू फूल को छोड़ करके उड़ जाया करता है। अरे बावरे, एक बात तो बता, ये कृष्ण के पास में लक्ष्मी जी हरदम कैसे रहती है, वो किस प्रकार से रहती है, वो प्रकार जरा हमको भी बता दे, ताकि हम कृष्ण को फिर लक्ष्मी के समान पकड़े रखें। अरे हाँ, अब बात आई ध्यान में, वो ऐसी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है, तो बिचारी वो क्या करे, लक्ष्मी वो उसकी बातों में फंस गई। हाँ, अपने तो फंसी नहीं बातों में, वो फंस गई बातों में, ये बात है। ए बहुरे, तो गुनगुनाता वापस हमारे पास आ गया, हमारे पास मता देख, हमने तेरे को मना कर दिया, तू जावे तो मथुरा वासियों के पास जा, वो तुझे खाने पीने की अच्छी चीजें देंगी, हमारे पास कुछ नहीं, हम तुमको कुछ भी नहीं देंगे। उद्धव जी यूं देख रहे हैं, क्या बोलूं इनके सामने। फिर वे देखती है कि शायद उद्धव जी के मन में ये आ रहा होगा कि जब ऐसी बात है तो फिर तुम इतनी होशियार हो, लक्ष्मी से भी ज्यादा होशियार हो, लक्ष्मी तो उनकी बातों में फंस गई, तुम क्यों फंसी, ऐसा ये उद्धव जी सोचेंगे। तो चौथी सखी बोलती है, दिवि भूमि चरसायाम का स्त्री तद्दुरापा कपट रुचि रहास भ्रू विजृंभस्य यास्यु। अरे हमारी क्या, संसार में ऐसी कौन स्त्री है, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे पृथ्वी पर चले जाओ, चाहे रसातल में चले जाओ, एक बार वो कपटता से, वो तिरछी नयन से जिसको देख लेता है, वो उसके नेत्र जाल में न फंसे, ऐसी बताओ तो उसे कौन स्त्री हो सकती है। ऐसा वो प्रेम में फंसाता है, ऐसा फंसाता है। तो देखा ना, लक्ष्मी जी को एक बार देखा होगा, लक्ष्मी जी उसके चरणों में अब लोटपोट हुई, न लक्ष्मी जी छोड़ते बनती है और न लक्ष्मी जी उनके पास पूरी रह भी सकती है। देख भावरे, तेरे को इस विषय में पंचायत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तू आएगा हमको भी फुसलाएगा और हमारी फुसलाहट से कुछ बातें करेगा, ऐसा मत कर। हम तो देखो बहुत भुक्त भोगी है, हमारे पतियों को हम छोड़ के आए, क्या लक्ष्मी जी ने पतियों को छोड़ा, कोई पति है लक्ष्मी जी के, हमने तो हमारे पति का भी त्याग किया। अच्छा, लक्ष्मी जी कोई बेटा है, बेटा भी नहीं है, इसलिए लक्ष्मी जी तो कहां जाए बेचारी, न उसका कोई पति है न उसका कोई बेटा है, वो तो लक्ष्मी जी तो कोई कहीं है नहीं, कैसे छोड़े उस कृष्ण को, इसलिए वो तो चापलूसी करे करे पड़ी रहती है, उनके पास कहां जाए। और हम ऐसी हैं कि हमने पति पुत्रों को और सबको छोड़ दिया और वो हमको छोड़ के चला गया, हमारी हालत तो देखो तुम, और फिर तुम हमारी आपस में संधि कराने के लिए बैठे हो, क्या संधि कराओगे। देखो संधि तो वहां होता है जहां दो चीज होती है ना, वहां संधि होती है, एक तो ये डोरी है और एक ये डोरी है, यू अब इन दोनों को तुम मिला दोगे, लेकिन एक ही डोरी, अब इसमें क्या मिलाओगे भाई, क्या मिलाओगे, किसके साथ जोड़ोगे, इतनी सी डोरी है इसको किसके साथ जोड़ोगे, दूसरी कोई चीज हो तो, क्यों तुम और कृष्ण होना, नहीं नहीं नहीं, अकृत चेता, अरे हमने तो हमारा चित्त जो है कृष्ण में दे दिया, अब हमारा मन नाम का चीज तो रहा नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, अब केवल एक कृष्ण ही कृष्ण है, अब किसको किसके साथ जोड़ोगे, एक को किसके साथ जोड़ोगे बताओ। क्या इन भोली भाली गवारणी स्त्रियों ने कैसी विलक्षण बात कही, वेदांत की सबसे ऊंची बात, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। देखो कैसा कहा है, एक है, इसको जोड़ोगे किसके साथ। ये इतनी ऊंची ज्ञान की बात सुनी हमारे उद्धव जी ने और गोपियों के मुख से, गोपियां वापस भक्ति पर आती है और कहती है कि ए बौरे, इसको हम आज से नहीं जानती है, इसको हम बहुत 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 लंबे समय से जानती है। मृगयूरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्माम स्त्री अमकृत विरूपाम स्त्री जित कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांशवद्यस् तदलमसित सख्यैर् दुस्त्यजस्तत् कथार्थ। ये रामावतार में इससे पूछो कि तुमने बाली के बाण क्यों मारा, बताओ किस कारण से मारा। किसी भी अवतार में चले जाओ, इसने कभी किसी को छिप करके नहीं मारा, प्रकट होकर के मारा, छाती ठोक करके मारा, और सब अवतारों में सबसे ज्यादा मर्यादा का अवतार रामावतार था। इससे पूछो कि राम जी के अवतार में इतनी बड़ी मर्यादा स्थापित करने वाला तू बाली को किस मर्यादा की रक्षा के लिए मारा, बता छिप करके क्यों मारा, और तेरा बाली ने बिगाड़ क्या किया। सुग्रीव के पास तुम सीता की रक्षा के लिए आए थे, सीता की खोज के लिए आए थे, तो भाई तुम सोचते तो सही, एक तरफ सुग्रीव जंगलों में असहाय होकर पड़ा है, किष्कंधा का राजा है, और बाली के तो काक में वो रहा हुआ है रावण, पर सुग्रीव के पक्ष में गया है और छिप करके बाली के मारा, बताओ ये कपट है कि नहीं भौरे, तुम खुद बताओ। चलो खैर, एक बार जीवन में गलती होती है, हो गई गलती। उसी रामावतार में दूसरी गलती और बताए, शूर्पणखा आई, शूर्पणखा ने कहा कि तोसम पुरुषन मोसम नारी, तेरे समान तो कोई मेरे लिए पुरुष नहीं है और तेरे लिए मेरे जैसी कोई नारी नहीं है, मैं तुमसे बड़ी मोहित हो गई, तुम मुझे स्वीकार कर लो। अब बताओ शूर्पणखा की गलती थी क्या, कितना तो सुंदर है ये, कैसे लोगों का कैसे ये जो है चित्त चोर लेता है, पहले तो चित्त में बस जाता है, फिर उनका चित्त आकृष्ट करता है, और वो कहते हैं कि हमारा चित्त आप में लग गया तो क्या नाक कान काट लो, ये कौन सी मर्यादा है बताओ, क्या नाक कान काट लो, इसका नाक कान बिचारी को कुरूप बना के भेज दिया। और क्या कहा, मेरे पास तो ये स्त्री है भाई सीता है, और तुम जो है लक्ष्मण के पास चली जाओ। स्त्री जीता है, स्त्री जीते माने स्त्रिया जीते हैं, स्त्री जीते नहीं है, ये स्त्रिया जीते हैं, माने ये स्त्री को जीतने वाला नहीं है, स्त्री ने इसको जीत लिया, सीता ने इसको जीत लिया, इसलिए सीता के वश में होकर के इसने शूर्पणखा को नाक कान काट दिए। अरे असल में देखो क्या बताएं तुमको, कि वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, तो उसके मन में ये आया कि अरे कहीं स्त्री ये जो शूर्पणखा है ये सीता से बड़ी सुंदर ना निकल जाए, इसलिए नाक कान कटा दिए उसके, ऐसे नाक कान काटे कि इसने हमसे प्रेम कर लिया, अभी और के साथ प्रेम ना कर सके, तो खुद से तो खुद ने तो प्रेम किया नहीं और औरों से प्रेम करने दिया नहीं, अब नाक कान कटी हुई को कौन चाहेगा बताओ। रज्जब अड़वो खेत को खावे न खाबा देत, खेत में एक अड़वा होता है लकड़ी का बड़ा है, ऊपर एक हांडी रख दी, एक कमीज का वो पुराना कमीज बना रहे। अब वो पक्षी देखता है, अरे आदमी खड़ा है, आदमी खड़ा है। वो आदमी नहीं, वो अड़ुआ है। तो रज्जब अड़ुओ खेत को खावे न खाबा देत, ऐसी दशा है। अच्छा चलो रामावतार की बात छोड़ो, एक बार हो गई, रामावतार में तो हो ही गई। हम इनसे पूछते हैं कि आप वामन बनकर के गए थे, छोटे से बनकर गए थे, और आपने वहां पर जाकर क्या कहा कि हम हमारे पैर से तीन चरण जमीन चाहते हैं। तो बताओ उस समय आप छोटे हुए के मांगे बड़े होकर के मांगे, बोलते हो और शरीर से और मांगते हो और शरीर से, ये छलावा नहीं तो क्या, ये कपट नहीं तो क्या है। इसलिए हम खूब अच्छी तरह से जानती हैं कि ये बहुत छली है, छलिया है, छलिया बहुत कपट करता है। हमें तो अब काले चीजों से प्रेम हुआ ही नहीं है, काले चीजों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। जितनी काली पीली चीजें हम तो हाथ जोड़ते बाबा, काली चीजों का नाम ही मतलब। फिर तुम क्यों उसकी चर्चा ही क्यों करते हो? एस गोपियों, फिर कृष्ण की चर्चा ही क्यों करते हो? तो वो गोपियां एकदम विवश होकर बोलती है कि दुस्तजस्तत कथार्थ है, क्या बताए उसकी कथा कहे बिना राह भी तो नहीं जाता। इतनी उपालंब दे रही है और अंत में बोल दिया दुस्तजस्तत कथार्थ है, उसकी कथा के विषय में बात किए बिना राह भी नहीं जाता। ए भवरे सुन, हम तो गोपियां हैं, गांव की छोकरियां हैं, हमारे साथ तो किया सो किया कोई बात नहीं, बेचारे इन साधु संतों को भी नहीं छोड़ा। ये साधु संत कोई भूखे घर में थोड़ी जन्म लिए थे, इनके माँ बाप भी तो रोटी खाते ही थे, इनके भी भाई भौजाई घर में बैठी रोटी खाती है, इनके भी भतीजे हैं, वो भी कुछ न कुछ भूखे तो मरे नहीं। साधु तो घर परिवार में एक बनता है, बाकी तो घर में ही रहते हैं, कोई रोटी की तो कमी थी नहीं। ये बिचारे कभी भूले भटके आ गए गोकुल धाम में, गांधी मैदान में आ गए। गांधी मैदान में आकर के इसकी कथा सुन ली, कथा सुनती वैराग्य हो गया, अरे कृष्ण ऐसा कृष्ण होता है? तो घर में गए और कहने लगे माँ मैं तो साधु बनूंगा। अरे बेटा ये क्या करोगे? नहीं माँ मैं तो साधु बनूंगा। बाप से कह दिया, माँ से कह दिया, अच्छी बात है बेटा, वो साधु बन गया बेचारा। अब साधु बन गए और सुबह 10-11 बजे भूख लगी, अब क्या करेंगे? प्रबंध तो करना ही पड़ेगा, घर में तो बनी बनाई रोटी मिलती, तो जाओ भिक्षा मांगने के लिए। तो वो भिक्षा मांग करके निर्वाह करते हैं। भिक्षा भी कोई मिल जाए अच्छी, लोगों को सुगम थोड़े ही, कितनी जगह भटकना पड़ता है। तो तुमने देखो इन साधुओं को भी नहीं छोड़ा, तेरे पीछे बिचारे ये लाल कपड़ा करके रंग बदल करके और घर बार छोड़ करके और तेरे पीछे खड़ा हुए, और आज उनकी ये दशा है कि मांग मांग करके जैसे चुग्गा पानी करते कबूतर जो है पेट भरता है, चिड़िया पेट भरती है, ऐसे बिचारे पेट भरने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। क्या इनकी देखो, तुमने सबके साथ ही ऐसा बर्ताव किया, बताओ। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्म विनष्ट सपदि गृह कुटुंबम दीनमोत्सृज्य दीना बहव इय विहंग भिक्षु चर्याम चरंती। ये दशा कर दी तुमने, अच्छे विचारे भले चंगे आदमी घर में आराम से मर्जी आए वैसा भोजन कर सकते थे, अब वो अपने मर्जी का भोजन तक नहीं कर सकते बेचारे, दूसरे के घर में जो बना हुआ है उसको खा खा करके अपना जीवन निकालते हैं। क्या तूने अपने प्रेमियों के साथ ऐसा ही प्रेम निभाया? और हम तो भाई सच्ची पूछा जा तो भोली भाली हिरणों के समान है। ये हिरणियां उछलती रहती है जंगल में और शिकारी आके पूंगी बजाता है, वो पूंगी बजाता है, उसकी आवाज सुनकर बिचारी हिरणियां खड़ी रहती है, और वो अपना बाण लगाया और वो फंस जाती है उसमें। ऐसे ही इसने जंगल के अंदर बंसरी बजाई, ऐसी बंसरी बजाई, ऐसी बजाई, उसमें हम तो एकदम फंस गई उसमें। वो बंसरी का शब्द अभी भी यहां छाती में भाल की तरह लगा है, भाले की तरह वो शब्द चुभ रहा है कि वो और दोबारा हमको सुनने को मिले, और दोबारा हमको सुनने को मिले। अरे भाई भंवरे, हमको ज्यादा उसके विषय में मत बताओ। अब देखो कितना, अब देखो एक अलग अलौकिक अनुराग में आ रही है। वो आराम से भोजन तो कर लेता है ना, वाह उसकी माँ कौन है, उसको मक्खन मिश्री मिल जाती है कि नहीं, वो वहां सुखपूर्वक तो है ना। कभी कभी वो यहां हम लोगों को याद तो कर लेता हो ना, और कभी वो हमसे आकर मिलेगा क्या। बड़े स्नेह से और प्रेम से हमारे सिर पर हाथ रखेगा ना, इतना काम तुमको बता दो। उद्धव जी तो भाई झर झर हो गए, ऐसा अनुराग ऐसा प्रेम देखे। उद्धव जी ने कहा कि अरे इन गोपियों के विषय में मेरे मन में भाव आया कि कृष्ण क्यों रोते हैं। अरे गोपियां तो बड़ी जो है बहुत ऊंची अवस्था की प्रेमिकाएं हैं, प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था। उद्धव जी तो महाराज एकदम डूब गए। सुखदेव जी कहते हैं अथ है, यहां अथ दिया है, अथ माने अब तक तो गोपियों का वर्णन किया मैंने, अब आप उद्धव जी की बात सुनो। उद्धव जी महाराज ने देखा कि श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा में डूबी हुई हमारी ये गोपियां कैसी कैसी कृष्ण की कथाओं को बोलती हैं, श्री कृष्ण का प्रिय संदेश उनको सुनाया। कैसे सुनाया देखो, इसमें नहीं लिखा है, एक जगह लिखा है। क्या उद्धव जी ने कहा, महाराज आप गोपियों को जो कुछ भी कहना चाहते हो वो आप एक कागज में लिख दो, मेरे को इतनी बातें याद नहीं रहेंगी। क्यों, मगज काम नहीं करता। उद्धव जी का मगज काम क्यों नहीं करता, कि उद्धव जी को ये बातें उस समय अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए भगवान ने गोपियों के नाम एक पत्र लिखा। वो पत्र लेकर के उद्धव जी महाराज जेब में रख लिए, यहां आए जब बात चलने लगी तो भगवान के पत्र को उन्होंने उपस्थित किया। गोपियों ने कहा कि उद्धव जी क्या है ये, कृष्ण भगवान का पत्र है। गोपियों ने कहा तुम पढ़ के सुना दो उद्धव, हमारे हाथ में यदि ये आ गया तो हमारे रोम रोम से जो ये कृष्ण के विरह की आग निकल रही है उस आग में ये पत्र जल जाएगा, और पत्र के जलने से हम जीवित नहीं रह पाएंगे, कृष्ण का संदेश हम सुन नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, और फिर हम भी मर जाएंगे, और हमारे मरने पर कहीं कृष्ण को दुख न हो, केवल हम इसलिए जी रही है, तो ऐसे जीने में लाभ भी क्या है। उद्धव जी तो अवाक रह गए कि गोपियों का रोना भी कृष्ण के लिए हो रहा है, गोपियों का विरह भी कृष्ण के लिए है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी महाराज कहते हैं, कहने लगे गोपियों को, अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः। ओहो भगवान वासुदेव में आपका ऐसा मन है तो आप पूर्णार्थ है, आपका प्रयोजन पूर्ण हो गया, आपका काम पूरा हो गया। दान है, व्रत है, तपस्या है, ये तो करते हुए हमने बहुत लोगों को देखा है, परंतु ऐसी भक्ति हमने आज तक किसी की नहीं देखी, मुनियों की भी नहीं देखी। घर गृहस्थ का त्याग तो बहुत करते हैं, पर घर गृहस्थ का त्याग करके और वे बाहर चले जाते हैं। आपने तो घर गृहस्थ का त्याग किया और त्याग करके घर गृहस्थ में ही रहे, घर गृहस्थ का त्याग कर घर गृहस्थ में ही रहे और यहां रह करके आपने जो एक विरह किया है कृष्ण के लिए, विरह और विरह की जो भक्ति बताई है, महान बे अनुग्रह कृत है, आपने मुझ पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। अब देखो भगवान उद्धव जी को क्यों भेजे, उद्धव जी थे ज्ञान के पक्षधर, भगवान उनको भक्ति की बात बताना चाहते थे और भक्ति की भी वो अवस्था जो प्राय लोग समझते नहीं है। भगवान ने उद्धव जी को इसलिए भेजा कि मैं तो अपनी लीला समेट लूंगा, मेरे पीछे एक उद्धव ही तो रहेगा सारे यदुवंश में, इसलिए इस उद्धव को चाहिए कि वो मेरे पीछे ज्ञान को भी सुरक्षित रखे तो भक्ति को भी सुरक्षित रखे। तो विरहीण महाभागा महान में अनुग्रह कृत है, आपने बड़ी भारी मेरे पर कृपा की है कि विरह की शिक्षा आपने हमको दी है। अब आप कृष्ण का संदेश मैं पढ़ता हूं और आप सुन लीजिए। भगवान ने कहा है भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खं वायव्यग्निर्जलं महि तथा हंच मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। गोपियो तुम मेरे विरह में जलती क्यों हो, मैं तुमसे अलग हूं तुम मुझसे अलग रहो तब तो विरह में रोना धोना ठीक भी तो लगता है, पर मेरा और तुम्हारा कभी वियोग हुआ ही नहीं, तुम्हारा और हमारा कभी वियोग हो सकता नहीं, संभव भी नहीं है, तो रोती क्यों, शायद तुम्हारे समझ में कुछ भेद आया हुआ है। जैसे पांच भूत सारे शरीरों में है, ऐसे ही मैं आत्मा रूप से सब शरीरों में विराजमान हूं। गोपियों तुम अपनी आत्मा की तरफ विचार तो करो। अब देखो ये गोपियां हैं भक्ति की अधिकारिणी, उनको ज्ञान की बात बता रहे हैं भगवान, और उद्धव जी थे ज्ञान के अधिकारी, उनको भक्ति की बात बता रहे हैं। तो भगवान कहने लगे कि देखो ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति को जो जानने वाला है वो मेरा ही रूप है, वो ही मैं हूं। ये जागृत क्या है, एक बुद्धि की वृत्ति है, जैसे स्वप्न है ऐसी जागृत है। अज्ञानी मनुष्य की ये पहचान है कि वो जागृत को महत्व देता है। अरे जागृत जैसे है तो भाई स्वप्न भी तो वैसा ही है, स्वप्न को जैसे हम झूठा मानते हैं जागृत को झूठा क्यों नहीं मानते, भाई जागृत को भी झूठा मानो, ये कौन सा सच्चा है। इसलिए मृषा स्वप्नवद उत्थित है, ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो ये संसार आपको बिल्कुल झूठा, जागृत भी आपको झूठा मालूम देगा। आप हो वो मैं हूं, मैं हूं वो आप हो। गोपियों एक बात है, केवल मैंने एक विरह एक वियोग की लीला की है ताकि इस वियोग के अंदर तुम्हारा प्रेम परिपक्व रहे, परिपुष्ट रहे। अरे हलवा करते हैं, हलवा बनाते हैं तो उस समय में घी की जरूरत रहती है, आटे की जरूरत रहती है, खांड की जरूरत रहती है, पानी की जरूरत रहती है, पर ये आग बीच में क्यों लगाते हो जी। आग है वो कोई इनके अंदर तो मिलता नहीं, आग क्यों लगाते हो फिर। अरे आग नहीं लगाएंगे तो आटा पकेगा नहीं, आग नहीं लगाएंगे तो खांड पकेगी नहीं, घी पकेगा नहीं, पानी पकेगा नहीं, इन सब का परिपाक चाहिए, उसके लिए आग लगाते हैं। ऐसे ही प्रेम का परिपक्व, प्रेम की परिपक्वता विरह में होती है, विरह की आग में होती है, और विरह होता है वो तो अलग होने में होता है, और अलग रहने में जो एक दूसरे का गुण दिखता है वो पास में रहने पर गुण नहीं दिखता, बल्कि पास में रहने पर दोष दिखते हैं। जो जो हरदम प्रेमी लोग पास में रहेंगे तो देखो पास में रहने से दोष दिखता है, दोष। ये बात है संसार में, संसार में ऐसा ही होता है, पास में रहेंगे कलह पैदा होगा, और जब पति कमाने के लिए दूर देश में जाते हैं तो पत्नी उनके पीछे व्याकुल रहती है, हरदम मन से बातें करती रहती है, और घर में रहते हैं तो कलह कर लेते हैं, क्योंकि एक आकांक्षा होती है, मिलने की आकांक्षा दूर रहने में बढ़ती है, उस आकांक्षा में स्वभाव का दोष नहीं दिखता, और पास में रहने पर स्वभाव, वो मिलने की आकांक्षा तो रहती नहीं, और अनुकूलता की इच्छा, ये हमारे अनुकूल रहे, वो अनुकूल स्वभाव होता नहीं तो खटपट हो जाती है। इसलिए हे गोपियों, में तुमसे अलग इसलिए हुआ कि तुम्हारा प्रेम मेरे में ज्यादा बढ़ता रहे। यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्री नाम च न तथा चेत सन्निकृष्टे अक्षि गोचरे। इसलिए मैंने ये सब किया है, आप तो ऐसा करो कि ब्रज के अंदर जो मैंने रास लीला की थी उसमें बहुत सी गोपियां शामिल नहीं हो सकी, उनसे पूछो कि तुम शामिल तो नहीं हुई पर तुमको रास का आनंद मिला कि नहीं, क्योंकि वो रास न मिलने से तड़फड़ा गई, घबरा गई, और फिर उन्होंने मन से मेरा प्रेम से आलिंगन किया तो उससे उनको एक बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली। इसलिए ये तो मेरी लीला है, विरह की एक लीला है। ये बात सुनकर के गोपियां बहुत प्रसन्न हुई। ये देखो ये क्या है, वहां का ना प्रत्यागमन संदेश है, ये प्रत्यागमन संदेश है, लौट करके आने वाली बात। तो ये भगवान ने उनको ये बताया कि देखो तुम थोड़ा उलट करके देखो, अपने में उलट करके देखो। कबीर जी ने कहा कि उलट करके देखने में, देख करके अपने ही में पाया, उलट फेर में अपने में पाया, अपने में पाया। मैंने तुझे बार बार बहुत ढूंढा पर उलट फेर अपने में पाया। अरे तू तो हमारे पास है, जितने सगुण निर्गुण के भक्त है वे आगे जाकर सब एक हो गए हो। जैसे सगुण साकार में भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे निर्गुण निराकार में स्वरूपोपलब्धि होती है, वो भी भगवान के दर्शन ही है। देखो उद्धव जी को तो बताई भक्ति की बात, और इनको गोपियों को बताई ज्ञान की बात, क्योंकि उद्धव जी का ज्ञान भक्ति के बिना अधूरा है, भक्ति नहीं करोगे तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। संत लोग क्या है, सत्संग करते थे, और जो है उस तत्व के विषय में वर्णन करने के राम राम करो, फिर राम राम कराते थे कि राम राम करने की क्या जरूरत है, कि भगवान का भजन नहीं करोगे ना तो ये ज्ञान ठहरेगा नहीं तुम्हारे पास। जैसे घड़ा है, वो घड़े में पानी डाल दिया लेकिन कहीं लीक लग जाए, कोई थोड़ा सा उसमें कहीं छेद हो जाए तो सारा पानी निकल जाएगा उसमें टप टप करते करते। ऐसे ही भजन के बिना ये ज्ञान ठहरता नहीं है। तो ज्ञान के लिए तो ये हुआ, और भजन की बात आई तो भजन है, वो भजन जो है कहीं वो क्रियात्मक रूप में ही नहीं रह जाए, केवल ठाकुर जी की बार से पूजा कर ली, ठाकुर जी को माला पहना दी, और ठाकुर जी के ये कर दिया, इतने भी अपना पुराने कुछ विवेक से भी काम लो, कुछ ज्ञान भी करो। तो भक्ति के लिए ज्ञान और ज्ञान के लिए भक्ति, इन दोनों का समावेश करना बहुत जरूरी है। तो प्रत्यागमन संदेश, भगवान ने कहा कि प्रत्यागमन संदेश से उनका दुख दूर कर देना, ये प्रत्यागमन संदेश है। प्रत्यागमन का यही अर्थ नहीं है कि भगवान कोई उसी रूप में वापिस जाए। इसलिए उद्धव जी ने कहा कि भगवान तो अपनी बात सत्य करते ही है। समय हो गया, पता ही नहीं चला। भगवान की कृपा है ये, भगवान की लीलाओं में समय जाता है, आदमी को पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं। आपको भी पता नहीं चला, किसी को भी पता है, कौन लीला में प्रवेश करने के बाद ये लौकिक चीजें सब दूर हो जाती है, अपने आप भी दूर हो जाती है। ये लीला है लीला। अब गोपियां, अब सब समय उन गोपियों को मिलने वाली चीज तो मिल गई। अब वो गोपियां कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ उद्धव जी, अब भंवरा वंवरा सब गायब हो गया, अब उद्धव जी से बात करती है। भगवत रस मिल गया ना, भगवत रस, ये भगवत रस होता है, भक्ति है, ज्ञान है, इसकी ऊंची बात मिलती है, अंदर ये भगवत रस जाता है, मन बुद्धि को बड़ी तृप्ति मिलती है। तो उद्धव जी ने जब ये बातें कही तो हमारी गोपियां उनसे कहने लगी, अच्छा बताओ उद्धव जी, वो कभी कभी हमको याद करते हैं कि नहीं? वो याद करते हैं ना, और उस रासलीला के विषय में कभी आपसे भी चर्चा की क्या? अरे उद्धव जी, यो ऐसी रासलीला रची उन्होंने, ओहो हम तो उस रासलीला से जी रही है, उसका ध्यान करती है, ओहो हमें ऐसा लगता है कि हम किस जन्म की कौन सी पुण्य की कमाई लिए हैं, हमारे पास कोई पुण्य नहीं, केवल उसकी कृपा थी कृपा, हमको बड़ी दिव्य रासलीला मिली, बड़ा प्यार किया, वृंदावने कुमद कुंद शशांक रम्य, अरे उस चंद्रमा की चांदनी के अंदर हमको वो रासलीला मिली थी। अच्छा बताओ उनकी कोई शादी विवाह की चर्चा हो रही होगी ना? अरे वो कम थोड़ा ही है, वो कम नहीं है, वो भी शादी करेगा तो सोच समझ करके बहुत ढंग से करेगा। तीसरी सखी बोलती है, अरे भाई क्या बताएं, अपने को तो एक वो पिंगला विषय थी ना विदेह नगर में, जिसने कहा था कि भाई आशा रखना बड़ा दुख का कारण होता है, आशा ही परमम दुखम, बात उसकी बड़ी अच्छी है सखी, तुम क्यों कृष्ण से ऐसी आशा करती हो कि वो आएगा और मिलेगा, कि क्या करें, वो एक आशा ही तो है, देखो उस कृष्ण के प्रति आशा ही तो है कि जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है, और क्या, और बताओ और हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण से मिलन की आशा के अलावा दूसरे हमारे पास साधना भी क्या है। ये बहुत ऊंची बात कही है, ये इतनी ऊंची बात है, भगवान से कभी निराश नहीं होना चाहिए, भगवान हमको जरूर मिलेंगे। एक संतों ने कहा, कोई कह दे कि साहब भगवान तो नहीं मिला करते, तुमको कैसे मिलेंगे? ना ना, और को भले ही नहीं मिलो, मेरे को तो पहले मिलेंगे। इस बात में अभिमान रखना चाहिए, ये अभिमान भगवान की कृपा का अभिमान है, भगवान जरूर मिलेंगे, औरों को नहीं मिले और जाने, मेरे को तो मिलेंगे। उसको भी मिलते हैं जो बीच बीच में आशा को तोड़ते रहते हैं, उनको नहीं मिलते। तथा प्यासा दुरत्यया, उद्धव ये वृंदावन है, ये देखो ये गोवर्धन पर्वत है, ये यहाँ यमुना नदी है, ये वो जंगल है, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र उन्होंने लीला की थी, इनको देख देख करके हमारा दिल भर जाता है, हमारा मन करता है वही कृष्ण वापिस आए, वो यहाँ नाचे गाए खेले कूदे बंसरी बजाए, और गत्या ललित योदारे हास लीला व लोक नहीं, जोर जोर से किलकारियां लगाए, सखाओं को इकट्ठा करे, क्या करे वो समय बीत गया तो बीत ही गया। हे उद्धव हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद सिद्ध हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपियों ने जब भगवान का संदेश सुना, उनके अंदर से एक बहुत ज्वर था, एक बड़ी घुटन थी, बेचैनी थी, वो दूर हो गई। और उद्धव जी की जो पूजा की उन्होंने, जो आदर दिया है, ओहो उद्धवम पूजयां चक्रु, बहुत उद्धव जी की पूजा की, तुम आए तो सही, आखिर तुमने हमारा हालचाल पूछा तो सही, हम कैसे दुखी है, कैसे जिन दिन निकाल रही है, तुमने हमसे पूछा तो सही। अब देखो उद्धव जी पर क्या प्रभाव पड़ा है गोपियों का। भगवान तो रो रहे कि तुम उद्धव जी जल्दी जाओ, उनका संदेश दे, उनको संदेश दे आओ, और प्रत्यागमन संदेश है और मेरे जाने का उनको संदेश देना, और देखो हमारे पास जल्दी आ जाना, तुम जल्दी आने की बात थी। पर उद्धव जी जल्दी नहीं आए, एक दिन लगता था उस जमाने में गोकुल से वृंदावन में रथ पर जाते थे तब। और अब क्या है कि उद्धव जी महाराज वहां पर कतिचिन मासान उवास है, कई महीने रहे वहां, कई महीने, कोई एक महीना दो महीना रहते तो कोई बात नहीं, कई महीने रहे वहां। वहां क्या किया, गोपियों के साथ घूम घूम करके एक एक जगह का अवलोक, यहाँ क्या किया कृष्ण ने, यहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया, सब लीलाओं का श्रवण किया। और श्रवण करने के बाद उन गोपियों को बैठाया, बैठा करके और कृष्ण की लीलाओं का गान किया, कृष्ण की लीलाओं को सुनाया। सुनाने से गोपियों का भीतर का दर्द था, दुख था, जलन थी, वो सब मिट गई कथा सुनने से। कथा सुनने का इतना बड़ा महात्म्य, गोपियों ने कथा सुनी, जो कथा की मूल पात्र भूता है भगवान के यहाँ, प्रेम पात्र भूता गोपियां भी कृष्ण की कथा सुनने से वे अपना शोक दूर कर पाई। गोपी नाम विनुदन सूचक है, गोपियों का शोक विनुदन माने नष्ट करते हुए ये कथा गाई उन्होंने। जब तक रहे उस कथा में ही मग्न रहते थे हमारे उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज जो जो कथा करें त्यों त्यों गोपियों में उनकी भक्ति बढ़ती गई, भक्ति बढ़ती गई। ऐसी भक्ति बढ़ी, देखो भगवान में भक्ति होनी चाहिए ना, भगवान में भक्ति नहीं हुई। अब घड़ी तो ऐसी चलेगी भाई, घड़ी भी ऐसी चलेगी, कथा भी ऐसी चलेगी, अपने ये तो चलेगी, दोनों ही चलेगी। समय होता है, हम क्या करें, हम ऐसी कथा कैसे लांग के कैसे जाए बताओ। किसी आदमी को हीरा पड़ा मिल जाए, सोने की डली मिल जाए, और अगर चले जाओ आगे चलो आगे चलो, अरे ये हीरे की डली पड़ी है, सोने की डली पड़ी है भाई, हीरा का पत्थर पड़ा है, ऐसे कि इसको लेकर के जाने आनंद है। अरे आगे तो समय हो रहा है, समय समय हो रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या होगा कि सोना हमको पड़ा पड़ा है मिल गया, इसकी प्राप्ति में क्या हमको जोर आया, इसमें समय लगता है तो बाबा पूरी जिंदगी लगो ना। वहां जाकर के कोई 150 रुपया भी मुश्किल से कमाएंगे, सोने की डली मिल गई। ऐसे ये भगवान की कथा है। हमारे उद्धव जी महाराज उस समय भगवान के विरह में, गोपियों के विरह में पड़े प्रसन्न होकर के कृष्णा वेशात्म विक्लवम, गोपियों का इस प्रकार से कृष्ण में आविष्ट होकर विक्लव करना, और खुद का भी भाव ऐसा ही बन गया उद्धव जी का, तो वे भी बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान से अंतर मन से प्रार्थना करने लगे। क्या एता परम तनुभृतो भुवि गोपवद्भो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ भावा वांछन्ति यद् भवभियो मुनयो वयंच किं ब्रह्म जन्म विरनंत कथा रसस्य। वास्तव में तो शरीर धारण करना इन गोपियों का श्रेष्ठ हुआ है। कैसा भगवान में एक आरूढ़ भाव हुआ, बड़ा ऊंचा जन्म हो जाए, बहुत ऊंचे कुल में जन्म ले लो और बहुत बड़ी विद्या प्राप्त कर लो, लेकिन भगवान में यदि प्रीति नहीं हुई है तो सब व्यर्थ है। ये आचार विचार नहीं जानती है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, आचार विचार बिल्कुल नहीं जानती। परंतु भगवान में इनका प्रेम देखो कैसा प्रेम है। इसका तो अर्थ यह है कि कोई आदमी दवाई को नहीं जानता, लेकिन दवाई का सेवन करने से उसका रोग दूर होता है, ऐसे वो चाहे भगवान को न जाने पर भगवान का सेवन करने से उसका संसार में आवागमन का रोग सदा के लिए मिट जाता है। ऐसा आनंद तो आज तक लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला जो रासोत्सव गोपियों को मिला है। इसलिए हे भगवान, आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ शधीनाम यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। महाराज, हमारे तो यदि संसार में आना हो तो इस वृंदावन में कोई पेड़ पौधा लता गुल्म वो बना देना, हमको पेड़ पौधा बना देना वृंदावन में, लता बना देना, कोई गुल्म मत आना। झुरमुट होता है वृक्षों का, झुरमुट होता है खेजड़ी का झुरमुट, यह एकदम पास पास वो गुल्म है, गुल्म झुरमुट ये बना देना। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तों पर ये गोपियों के चरणों की धूली उड़ उड़ करके लगती है, उस धूली से हम पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि गोपियां आपके अंदर बहुत प्रेम करती है, इन्होंने अपने मर्यादाओं का त्याग किया और आपसे प्रेम किया, आपके चरणों में प्रेम किया, जिन चरणों को वेद की श्रुतियां भी आज ढूंढती रहती है, श्रुतियां भी ढूंढती रहती है, वो गोपियां आपके चरणों के पीछे रहती है और उनकी चरण धूली हमारे पर गिर जाए, हम पवित्र हो जाएंगे। रासलीला के अंदर महाराज आपने अपना सर्वस्व इन पर न्योछावर किया है और इन्होंने अपना संताप जो दूर किया है, ऐसी गोपियों जैसा कौन संसार में दूसरा हो सकता है। हे कृष्ण, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षस यासाम हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नंद जी के इस ब्रज में रहने वाली जो गोपिकाएं, इनके चरणों की धूली को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जो आज तक इस सारे संसार में भगवान की कथा को प्रकट करती करती संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर रही है, भगवान की कथा के साथ, प्रेम कथा के साथ जुड़ करके। और ये कैसा अलौकिक दिव्य त्रिलोकी के अंदर एक पवित्रता प्रदान हुई है। सबको प्रणाम किया हमारे उद्धव जी ने, यशोदा जी को, नंद जी को, गोपियों को, गोपों को, और सबको प्रणाम करके वे रथ में बैठ गए विदा होने के लिए। इतने में ही नंद आदि सब तरह तरह की सामग्री लेकर आए और रथ के पास आकर के झरझर होते हुए गंगा जमुना बहाते हुए उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव जी हमारी अब कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही है कि हमारी मन की वृत्तियां घूम फिर करके कृष्ण के चरणों में लगी रहे, हमारी वाणी से थोड़ी थोड़ी देर में केवल कृष्ण के नाम का उच्चारण होता रहे और इस शरीर से थोड़ी थोड़ी देर में हम कृष्ण को प्रणाम करते रहे, बस ये हमारी इच्छा है। चाहे हमारे कर्मों से हम कहीं भी भटके, कहीं भी जाए, हमारा कृष्ण से प्रेम नहीं छूटना चाहिए। उद्धव जी महाराज वहां से रवाना हुए और मथुरा कृष्ण पालिता मथुरा आए। रास्ते में विचार कर रहे थे, देखो पहले विचार कहाँ कर रहे थे, ये कृष्ण कैसे है, कहाँ हमको गोपियों के पास भेज रहे हैं, हमें क्या मतलब है, आप चाहे किसी से संयुक्त हो वियुक्त हो, आप रोते हो, हम तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आए थे, पर ठीक है आपने हमको कहा हम आ गए, ऐसे सोच रहे थे। अब जाते समय सोच रहे कृष्ण बड़ा निष्ठुर है, महलों में बैठा है, वो मथुरा की तो रक्षा कर रहा है, पर इस गोकुल के अंदर पढ़ा बड़ा हुआ और इतना प्रेम मिला, मथुरा में कौन इतना प्रेम करने वाला मिलता है, इनको बिचारों को छोड़ करके मथुरा गया है, मैं उसको जाऊंगा और उसको मनाऊंगा, उसको कहूंगा कि हमने सुना है तुम दीनानाथ हो, हमने सुना है कि जो व्यक्ति आपके लिए एक आंसू बहाता है आप उसके लिए हजार आंसू बहाते हो, हमने सुना है कि वो थोड़ा सा किसी के हृदय में एक बार भी भगवान के प्रति भक्ति हो जाती है वो सदा के लिए भगवान उसको याद रखते हैं, इतने वो दयालु हैं। आज जाके कहूंगा तुम्हारी दयालुता कहां गई, तुम्हारी भक्तवत्सलता कहां गई, कहां गई तुम्हारी भक्तवत्सलता, बेचारी गोपियां रो रही है तुम उनसे जाकर मिल भी नहीं सकते, इतने निष्ठुर हो इतने कठोर हो, अभी जाके कहता हूं। बड़ी फुर्ती से वो मथुरा में गए। देखो ये आप कहोगे भागवत में तो लिखा हुआ नहीं है, भागवत में देखो, भागवत में जैसे होम्योपैथी दवाई होती है ना इतनी सी गोली है और उसमें कई चीजों का सार आता है, ऐसे थोड़ा सा शब्द दे दिया भक्ति उद्रेकम ब्रजऊ कसाम, इन ब्रजवासियों का भक्ति भक्ति का उद्रेक देखा, उद्रेक माने ऊपर की तरफ उठने वाला प्रवाह, यू प्रवाह जैसे फवारा होता है ना, फवारा फवारा यू होता है, वो अपने में माता नहीं है फिर यू उछलता है फवारा, यू ऐसे भक्ति का उद्रेक देखा। उद्रेक देख करके उनको ये सब बातें याद आई, मथुरा में गए और गए तो अच्छी बात आई, उद्धव जी बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब देखो अथ है, हमारे सुखदेव जी महाराज अथे को बहुत ठीक बोलते हैं, ऐसी जगह लाकर अथे रखते हैं कि पढ़ने वाला सुनने वाला एकदम सावधान हो जाए। अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन है, इस बात की जरूरत क्या थी कि भगवान सब जानते हैं, भगवान ने ये जान लिया, ये बात कहने की जरूरत क्या है, भगवान अंतर्यामी है, उनको पता चल गया कि उद्धव जी महाराज मेरे भक्त वत्सलता में संदेह कर रहे हैं कि इनको गोपियों के साथ जाकर मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए गोपियों से, ये बात भगवान ने विज्ञाए जान ली। और आते ही भगवान कहने लगे सुनो सुनो ओ उद्धव जी चलो 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 भक्त से मिलने के लिए चलना है। तुझे कह रही ये क्या बात हुई, ये कहां जा रहे हैं, अरे भक्त से मिलने के लिए चलना, चलो चलो आओ। उद्धव जी को साथ में लिया, पहले उद्धव जी को नहीं लिया, अब उद्धव जी को साथ में लिया कि चलो आप। और कहां गए, शैलेंद्र के महल में गए। अब देखो सबसे पहले शैलेंद्र के महल में निमंत्रण पहले किसने दिया था भाई, कल आपको याद होगा अक्रूर जी ने, अक्रूर जी ने कहा मेरे घर चलो, अभी उनके घर नहीं गए, अक्रूर जी के घर न जा करके और जो है शैलेंद्र के घर खूब जाके घर जा रहे हैं। ध्यान से सुनना इस कथा में, देखो गोपियों की कैसी महिमा निकलती है। भगवान खूब जाके घर गए और अक्रूर जी के घर अभी नहीं गए, अरे अक्रूर जी के घर तो कंस को मारने के बाद चले जाना चाहिए था, नहीं गए, पहले ही पहले वे गोपियों के यहां अपना संदेश वाहक भेजते हैं और उद्धव जी आते हैं, अब भी उनके साथ जाते हैं। ये किसके लिए लीला कर रहे हैं भगवान, ये अपने परम प्रिय आत्मीय अपना सब कुछ उद्धव जी के लिए कर रहे हैं कि मेरे बाद उद्धव जी को ज्ञान में भक्ति में संसार में बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए कर रहे हैं। अतः विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन है शैरेन्द्रिया काम तप्ताया प्रियम इच्छन गृहम ययउ। भगवान श्री कृष्ण उस शैरेन्द्र के घर पर गए जिस शैरेन्द्र के मन में बैठे बैठे बार बार कृष्ण से मिलने की अति उत्कंठा जागृत हो रही थी। अब आए अब आए अब आए तो भगवान वहां गए, खूब अच्छा महल सजा हुआ उसका, मोतियों की लड़े वहां पर जो है अच्छे ढंग से बंदरवार की तरह बांधी हुई। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, देखो अब बहुत ध्यान से सुनना, जिनके पास भागवत है वो शब्दों पर पूरा ध्यान रखते हुए सुनना। गृहम आयांतम अवेक्षे, भगवान उसके महल में चले आए। वो अपने आसन से उठ खड़ी हुई, एकदम संभ्रमित हो गए आश्चर्य, अरे कृष्ण आ गए है? ऐसे वो आश्चर्य में डूबी। और भगवान अपने सब सखाओं के साथ में, बलराम जी के साथ में, सबके साथ में चले आए अंदर। अंदर आए तो भगवान जो है वो एक आसन पर बैठ गए, सदासनादि ऊंचे आसन पर बैठ गए, अच्छे आसन। वो आसन था खाली, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम आवलो बैठो। उद्धव जी तो आंखें डबडबा रही थी ना। उद्धव जी भगवान को देख करके और उस आसन को प्रणाम करके ऊर्व्याम न्यसीदत, पृथ्वी के ऊपर ही बैठ गए। न्यसीदत ऊर्व्याम, पृथ्वी पर बैठ गए। हम तो महाराज ऊपर नहीं बैठ सकते आपके बराबर, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो, अब देखो भगवान के आने के बाद वो गई, स्नान किया और काजल लगाया, तरह तरह का अपने श्रृंगार किया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, आभूषण पहने और साथ में जो है पान तमोली ले आई और ला करके बड़ी लज्जा के साथ श्री कृष्ण के पास खड़ी हो गई। ये क्या है, गोपियों का कैसा भाव और इसका कैसा भाव हो? भगवान की एक बांसुरी नाद सुनकर के गोपियों गोपियों के घर में भगवान कभी भी जैसे यहां आए ना ऐसे कभी घर पर नहीं गए। भगवान जंगल में गए, वहां जाकर भगवान ने बंसुरी बजाई, केवल बंसुरी। उसके पीछे गोपियों ने अपना सारा कृत्य छोड़ा और व्यत्यस्त वस्त्र भरना, कल के पंचाध्याय में सुना होगा, अस्त्र उनके वस्त्र और आभूषण सब अस्त व्यस्त थे और कृष्ण के अंदर आकर्षण हुआ और वो चली आई जंगल में। और ये कृष्ण के आने पर श्रृंगार करने के लिए गई है, माने शैरेन्द्र का जो प्रेम है वो प्रेम कैसा है, गोपियों का प्रेम वो उसमें त्याग है और शैरेन्द्र के प्रेम में त्याग नहीं है। प्रेम त्याग की आकांक्षा करता है, त्याग के ऊपर प्रेम ठहरता है। और अब वो क्या बोलती है, अपने प्राण प्रीतम को इस समय में नए रूप में देखा तो उसके मन में कुछ लज्जा भी आई और उसने अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को स्वीकार किया अपना संताप मिटाने के लिए। उसके मन में बड़ी इच्छा थी ना कृष्ण से मिलने की, उस संताप को दूर किया, त्याग नहीं किया, अपने संताप की पूर्ति के लिए वो कृष्ण से मिली। और देखो आनंद मूर्तिम अजहात अति दीर्घ तापम, बहुत लंबे समय से उसके मन में जो संताप था वो अजहात संताप छोड़ा, अर्थात कृष्ण मिलन में उसका अपना स्वार्थ है और कृष्ण से प्रार्थना क्या करती है, वो दुर्भगा है, दुर्भगा दुर्भगा माने दुर्भाग्यशालिनी। वो कैसी दुर्भाग्यशालिनी, आओ कहने लगी, ओहो हे मेरे प्राण प्रियतम, तुम मेरे साथ यही रहो और आप मुझे यही रह करके बड़े आनंद में डुबाते रहो, मैं आपको छोड़ नहीं सकती हूं, आपका त्याग कर नहीं सकती हूं। ये कहने का अर्थ क्या हुआ, ये तुम त्याग नहीं कर सकती माने अपना घर अपना महल अपनी संपदा अपना सौंदर्य और अपना श्रृंगार ये सब कुछ रखते हुए तुम जो कृष्ण से प्रेम करती हो ये दुर्भगा है, ये दुर्भगत्व है उसका, उसका दौर्भाग्य है कि प्रेम के लिए उसने त्याग नहीं किया। और अपने घर में आए हुए को बोलती है कि आप यहीं रहो, मैं आपका त्याग नहीं कर सकती। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं जी, अब हम जाते हैं जाते हैं। तुम क्या चाहती हो, तुम चाहती क्या हो? मैं तो मुक्ति चाहती हूं महाराज। अच्छी बात, जाओ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो तस्से ही काम वरम दत्वा, क्या गोपियों ने कभी कोई कामना की कृष्ण से, कोई मांगा? कुछ नहीं मांगा, बल्कि गोपियां तो यही देखती रही कृष्ण को भोजन तो मिलता है नहीं, कृष्ण को खाने पीने के लिए मिलता है, आराम से भोजन कर लेता है, उसको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। गोपियां जल रही हैं, मर रही हैं, पर वो देख रही थी पूर्ण मर जाएंगी तो कृष्ण को तकलीफ होगी। एक कवि ने कहा है कि नंद जी मरे क्यों नहीं, कि नंद जी पहले दशरथ बने हुए थे, उनको मालूम है कि यदि मैं पिछले की तरह मर जाऊंगा, दशरथ जी की तरह मर जाऊंगा तो राम जी को बड़ी तकलीफ होगी। कितनी तकलीफ हुई चित्रकूट में भगवान, अरे मेरे पिता मर गए। ऐसे कृष्ण को तकलीफ हो जाएगी, केवल कृष्ण के लिए प्राण धारण कर रहे हैं, गोपियां केवल कृष्ण के लिए प्राण धारण कर रही है, ये स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं कि मेरे लिए जी रही है वो मदात्मिका। वो इधर ये सैरेंद्री ये कुब्जा वो कहती है कि मेरा संताप दूर हो, मेरे मुझे आनंदित करने के लिए, मेरे प्राण रखने के लिए आप यहां रहो। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम नहीं रह सकते, वो गए भगवान। उद्धव जी के मन में अरे इनकी लीला अपरंपार है, जिनसे मिलना चाहिए उनसे न मिल करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ये हमको कृष्ण बता रहे हैं कि देखो हमारे प्रेमियों के क्या क्या ढंग होते हैं। अब आए अपने अक्रूर जी के वहां, अक्रूर जी के यहां आए तो भगवान का बड़ा स्वागत किया, महाराज गंगा जी तो अपनी जगह है, मैं आपके चरणों को धोऊंगा यही गंगा जी बन जाएगी। गंगा जी बनाना तो बड़ा सुख है, महाराज आपके चरणों को धोया गंगा जी हुई, वो आपका चरणों का धोबन ही तो है, मैं आपके चरणों को धोता हूं, वो चाहे कॉरपोरेशन का ही जड़ हो पर आपके चरणों को धो दिया वो गंगा जी हो गई। अब महाराज आप मेरे यहां रहो, आप तो महाराज आप और बलराम जी प्रकृति और पुरुष हो, संसार को बनाते हो पालते हो और देहादि की उपाधि से आप बिल्कुल अलग हो, जीव के जीव जैसे देह की उपाधि से उपहित हो गया ऐसे आप उपहित होने वाले नहीं हो। आपने जगत को मर्यादा में बांधने के लिए वेद की मर्यादा बनाई है और हमारी बस्ती तो महाराज आपके चरणों से पवित्र हुई है। अब महाराज हमारी तो और कोई प्रार्थना नहीं है, एक ही प्रार्थना है कि हमारे परिवार में ज्यादा बराबर साथ साथ रहने से पति पुत्र का और माँ पुत्र का, पति और पत्नी का और माँ और बेटे का और बाप और बेटे का और भाई भाई का, ये जो आपस का जो रिश्ता है इसमें आदमी डोरी से बंध गया महाराज, बहुत कोशिश करते हैं निकलता नहीं है, ये हमारे फंदा निकलता नहीं, गले में फंसा हुआ आप निकाल दो महाराज, इस फंदे से आप हमको मुक्त कर दो। भगवान ने कहा कि अक्रूर जी, मैं तो आपके पास एक काम से आया था। क्या काम महाराज? उद्धव जी सुन रहे हैं यहाँ। उद्धव जी को वो काम नहीं दिया जो काम अक्रूर जी को दे रहे हैं। उद्धव जी को और जगह भेजा था। अक्रूर जी, आप तो बड़े बहुत अच्छे हमारे मंत्रियों में रहे हो, बहुत अच्छे आप समझदार हो। जैसे आपने मुझे समझा करके मथुरा में बुलाया, ऐसे आप हस्तिनापुर में जाओ। और हमने सुना है कि पांडवों के साथ में ये बड़ा अन्याय कर रहा है धृतराष्ट्र, उसको समझाओ। आपने जो हमारी स्तुति की है, आज चाचा जी हम तो आपके बच्चे हैं। जो आदमी स्तुति करने वाला होता है, दूसरे की बड़ाई करता है, वो बड़प्पन के लायक होता है। हम काहे के बड़प्पन के लायक है? आप तो जाओ और हस्तिनापुर के समाचार लेकर के आओ। अक्रूर जी गए, ये भगवान तो अपने स्थान पर आ गए उद्धव जी वगैरह के साथ। इधर अक्रूर जी गए हस्तिनापुर, सबसे मिले, वहां सब कथाएं सुनी कि ऐसे ऐसे इनको जो है भीमसेन को जहर दे दिया गया था, लाक्षागृह में इनको जला दिया था। ये सब बातें उन्होंने सुनी। गर्दानाद्यपेशलम, तब उन्होंने जो है अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, देखो धृतराष्ट्र जी, मैं कई दिन से हस्तिनापुर रहा हूं, सब बातें मैंने सुनी है। अब मैं आपको हित के लिए बोलता हूं कि आप मरोगे तो अकेले साथ में मरोगे हो, आपके साथ कोई नहीं मरेगा। और मर भी जाएगा तो साथ में जाएगा, जिस लोक में आप जाओगे उसमें सब जाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा आप सोच विचार के चलो। मनुष्य अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है, कर्मों का यहां संग्रह करके मर जाता है। इसलिए स्वप्न को, इस संसार को स्वप्न माया के समान झूठा समझो और अपने पांडु पुत्रों के साथ अन्याय मत करो। जिन बेटों के साथ आप अन्याय कर रहे हो, आपको उस अन्याय का फल मिलेगा और बेटों को ज्यादा से ज्यादा संसार का धन मिल जाएगा। ये धन मिलना अलग है और ये मिलना अलग है, अलग अलग है दोनों। धृतराष्ट्र का यथा वदति कल्याणी वाचम दानपते भवान। देखो अक्रूर जी, आप जो बात बोलते हो बिल्कुल ठीक है, परंतु क्या करे, भगवान की विधि ऐसी है, विधान ही ऐसा है कि अब क्या बताएं। उनकी माया को कौन क्या समझे, क्या कैसे उनकी माया का पार कोई जाए। वही हमसे जैसा करवा लेते हैं वैसा हम कर लेते हैं, और क्या है। जो हमसे जैसा करवाए वैसा हम कर रहे हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। उनकी जैसी माया है वही सब काम करते हैं, वही करवाते हैं। यो दुर्विमर्श पथया निजमायेदम सृष्ट्वा गुणान विभजते तदनु प्रविष्ट है तस्मै नवो दुरवबोध विहार तंत्र संसार चक्र गतये परमेश्वराय। उस परमेश्वर को नमस्कार है, कैसा संसार चला रहे, चक्र चला रहे, चक्र। इसलिए महाराज ज्यादा पंचायती तो हम करते नहीं, हम इतना ही करते हैं कि भगवान के घुमाए हुए घूम रहे हैं और कोई बात नहीं। तो भाई अक्रूर जी ने देखा कि भाई 9 दिन चले या 2.5 कोस, खूब समझा दिया, ये धृतराष्ट्र तो मानने वाला है नहीं। उन्होंने आकर के बलराम जी को और कृष्ण को सब बात समझा दी और अक्रूर जी अपने महल में आ गए। ये यहाँ दशम स्कंद का पूर्वार्ध हुआ है, अब आगे दशम स्कंद का उत्तरार्ध चलता है। खूब तो देखो बंसरी बजा ली, खूब जो है माखन खा लिया, खूब बढ़िया नाच गान कर लिया भगवान ने। अब देखो ये माधुरी लीला यहां समाप्त हुई, अब भगवान की ऐश्वर्य लीलाएं चालू होगी। ऐश्वर्य लीला बड़ी विचित्र है, उन ऐश्वर्य लीलाओं में अब आप मध्यम विश्राम के बाद प्रवेश करेंगे और 20 मिनट का मध्यम विश्राम, उसके बाद आज रुक्मिणी विवाह का प्रसंग भी चलेगा, अपने प्रसंग पर आएगा आएगा। और आज भगवान के सारे विवाह कर देंगे विवाह, आपको ये जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में भगवान का विवाह क्या चीज होती है, 16108 क्या चीज होती है। बड़े प्रेम से आप सुन रहे हैं, ऐसी आप मध्य विश्राम के बाद आकर शांति के साथ सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
बाबा
I'm
Rama Sri Rama राधा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवा।